SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
पेश है आज के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ। सेनेटर फातिमा पेमन ने लेबर पार्टी छोड़ने के 4 महीने बाद ऑस्ट्रेलियाज वॉइस नाम से अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी शुरू की है। इस राजनीतिक पार्टी का इरादा हर राज्य में अपने सेनेट उम्मीदवार खड़े करना है। सेनेटर पेमन ने SBS को बताया कि उनका इरादा प्रधानमंत्री की सीट ग्रैंडलर से भी उम्मीदवार खड़े करने का है। उनका कहना है कि अब तक कोई भी उम्मीदवार पक्के नहीं हुए हैं, लेकिन उनसे कई पूर्व लेबर और नेशनल पार्टी के उम्मीदवारों ने संपर्क किया है। फातिमा पेमन का कहना है कि ऑस्ट्रेलियाज वॉइस एक मध्यस्थ पार्टी होगी जो समावेशी ऑस्ट्रेलिया पर केंद्रित रहेगी। फेडरल सरकार ने ऑस्ट्रेलिया को अपना पहला स्वतंत्र साइबर सिक्योरिटी कानून देने का प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव के तहत सरकार कंपनियों और दूसरी इकाइयों को सीधे निर्देश दे सकेगी कि वे अपने खतरे की प्रबंधन व्यवस्था में सुधार करें। इसी के साथ वे स्मार्ट उपकरणों में साइबर सुरक्षा के मानक भी तय करेगी। साथ ही फिरौती मांगे जाने की परिस्थिति में एक अनिवार्य फिरौती रिपोर्ट करने की व्यवस्था भी लागू की जाएगी। गृह मंत्री टोनी बर्क का कहना है कि घरों में प्रयोग होने वाले स्मार्ट उपकरण इस समय बड़े खतरे पर हैं। वहीं वे बड़ी एयरलाइन कंपनियां जो जानबूझकर ऑस्ट्रेलिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों पर प्रतिस्पर्धियों को रोकती हैं, उन पर अब नए नियमों के तहत बड़े और अधिक कड़े जुर्माने लगाए जा सकेंगे। कॉन्टस और वर्जिन पर आरोप लगाया गया है कि वे जानबूझकर ऐसे स्लॉट लेती हैं जहां वे फ्लाइट चलाने ही नहीं वाली, ताकि उनके प्रतिरोधी बाजार के बड़े हिस्से ना ले सके। सिडनी हवाई अड्डे पर हर घंटे में केवल 80 स्लॉट उपलब्ध होते हैं। अगर ये कानून लागू होता है तो सरकार एयरलाइंस पर सिविल पेनल्टी लगा सकती है, जिससे बिना बात के स्लॉट लेने और उन्हें ना इस्तेमाल करने की सूरत में किसी और को ना देने के लिए उन्हें दंडित किया जा सकेगा। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटियां विश्व रैंकिंग में पिछड़ती नजर आ रही हैं, जहां कुछ यूनिवर्सिटियों को अब तक की अपने सबसे खराब सालाना रेटिंग मिली है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स दर्शाती हैं कि ऑस्ट्रेलिया का शीर्ष विश्व स्तरीय संस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न है, जो कि 39वें स्थान पर है। हालांकि इस संस्थान ने देश के शीर्ष होने की अपनी जगह को 15वें वर्ष में भी बनाए रखा है, लेकिन विश्व स्तर पर ये 21 साल के इतिहास में अपनी सबसे खराब रैंकिंग पर है। सूची में अगली ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी मोनैश है, जो कि 54वें स्थान से फिसलकर 58वें स्थान पर आ गई है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी 60वें स्थान से गिरकर 61वें स्थान पर पहुंच गई है। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका में हरिकेन मिल्टन अब कैटेगरी 5 की गंभीरता के साथ फ्लोरिडा के पहले से ही तबाही झेल रहे गल्फ कोस्ट पहुंचने जा रहा है। इलाके में ट्रैफिक जाम और ईंधन की घोर कमी देखी जा रही है। आधिकारिक आदेश के अनुसार 10 लाख लोगों को तूफान की तीव्रता के कारण अपना घर खाली करना होगा। चेतावनी जारी की गई है कि अब समय कम रह गया है। यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर के निदेशक माइकल ब्रेनन का कहना है कि इस क्षेत्र का अब तक का सबसे भयंकर तूफान हो सकता है। फ्लोरिडा में 2 हफ्ते पहले ही हरिकेन हेलेन ने तबाही मचाई थी। और अंत में खबरें भारत से। भारत में जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को बहुमत हासिल हुई है। इस जीत के तुरंत बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के साथ प्रतिकूल संबंधों से कोई लाभ नहीं होगा। राज्य में विधानसभा चुनाव एक दशक बाद हुए हैं। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उमर अब्दुल्ला दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। उमर अब्दुल्ला को उनके पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक फारूक अब्दुल्ला का समर्थन मिला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपना वादा पूरा करने और 5 साल पहले अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद छीने गए राज्य के दर्जे को बहाल करने का आह्वान किया है। राज्य के दर्जे की बहाली एनसी और कांग्रेस के गठबंधन का एक प्रमुख चुनावी मुद्दा थी। जम्मू कश्मीर को राज्य की जगह केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इसी के साथ 9 अक्टूबर 2024 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। दीजिए वैशाली को इजाजत। नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।